Hare Krishna. कितने दिनों से हम महाभारत का श्रवण कर रहे थे? 4 दिन. आज थोड़ा श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ है. बस ठीक है, मैं कर लूंगा. श्रीमद् भागवत पुराण सभी शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ है. उसकी महिमा स्कंद पुराण बताई गई है, उसके बाद पद्म पुराण में आपको मिलेगा भागवत की महिमा है. जैमिनी जी भी अपने महाभारत में भागवत की महिमा बताते हैं, और भागवत की महिमा भागवत में भी बताई है. तो श्रीमद् भागवतम के बारे में बोला जाता है, उसी में श्लोक है भागवतम में ही, पहले स्कंद में, तीसरा श्लोक है, पहले स्कंद का पहले अध्याय का तीसरा श्लोक. निगम कल्पतरु गलितम फलम शुकम कात अमृत प्रवसेयुतम पीबद भागवतम रसमालय मुहुरहुस्क भूवि भावकाः. इस श्लोक में भागवत की महिमा बताया है. निगम कल्पतरु गलितम फलम, इसके शब्द के ऊपर गौर करिए. निगम अर्थात वेद. वेद में 3 कांड है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, और उसमें इन तीनों कांड में, खास करके कर्मकांड और उपासना कांड में, प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया है. वैसे उपासना कांड में निवृत्ति मार्ग भी है, खास करके कर्मकांड जो है उसमें प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन है. प्रवृत्ति मार्ग अर्थात इन्हीं लोक और परलोक में अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को सिद्ध करना. धर्म का पालन करके पैसे कमाना, अर्थ, क्योंकि अर्थ की प्राप्ति के बिना काम संभव नहीं है. काम अर्थात इंद्रिय भोग, कोई भी प्रकार का इंद्रिय भोग वो काम की कैटेगरी में आता है. उसके लिए धन चाहिए, है ना, पैसे के बिना भोग नहीं हो सकता. क्योंकि जीवात्मा इस भौतिक जगत में लगभग अनादिकाल से फंसा हुआ है, लगभग शब्दशः नहीं, लगभग. उस कारण से उसकी इस भौतिक जगत के साथ गाढ़ आसक्ति है. सब लोग विषयों का भोग भोगना चाहते हैं, विषय को भोगना चाहते हैं, इंद्रियों का सुख भोगना चाहते हैं. तो जीवात्मा की आदत उसकी काफी चीर काल से है, काफी लंबे समय से है, और उसका इस भौतिक जगत के साथ ऐक्य, एकता इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अपने आप को भौतिक जगत की पैदाइश समझता है. वो है नहीं भौतिक जगत का, फिर भी वो अपने आप को भौतिक जगत का ही समझता है. तो हमारी मूल पहचान क्या है? हम लोग शरीर नहीं, आत्मा है, वो हमारी मूल पहचान है. देही नोस्मि यथा देह, देही, हम देही हैं, देह नहीं है. इस देह में निवास करने वाले देही हैं, अर्थात इस देह से पृथक, उससे अलग एक चेतन आत्मा है. लेकिन चूंकि जीवात्मा इस भौतिक जगत के साथ और अनेक प्रकार के भौतिक शरीर के साथ अनादिकाल से संग कर रहा है, इसलिए वो अपने आप को शरीर ही मानता है. जिस शरीर, जो शरीर वो धारण करता है, उसके शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेता है. जब जीवात्मा कुत्ते के शरीर में होता है तो जीवात्मा सोचता है कि मैं कुत्ता हूं, इसलिए वो भौ भौ करके भोगता है ना. गधे के शरीर में होता है तो वो अपने आप को गधा समझता है और फिर लात मारता है दूसरों को. वो कौवे के शरीर में होता है तो काम काम करता है, अपने आप को कौवा समझता है. जब पुरुष के शरीर में होता है तो अपने आप को पुरुष समझता है, पुरुष की तरह चेष्टा करता है. जब स्त्री के शरीर में होता है तो अपने आप को स्त्री समझता है, लेकिन वास्तव में इनमें से वो कुछ भी नहीं है, वो इनसे परे है. लेकिन उसका संबंध इस भौतिक जगत के साथ काफी लंबे समय से होने की वजह से वो अपने आप को इसी जगत का मानता है. जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, वो ऐसे सोचता है, क्योंकि माया का प्रभाव है. उस कारण से उसकी भोग वृत्ति बहुत प्रबल, बहुत प्रबल। हम देखते हैं बड़े बड़े ऋषियों के चरित्र, बड़े बड़े राजाओं के चरित्र हमने देख लिए, उस दिन यजाति का चरित्र हमने देखा। यजाति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत महान व्यक्ति। उन्होंने कितने सारे तो यज्ञ किए थे, कितने दान इत्यादि किया था उन्होंने, तपस्या भी खूब की थी, फिर भी भोग वृत्ति नहीं गई। शुक्राचार्य ने शाप दे दिया कि बूढ़े हो जाओ तो क्या कर लेना चाहिए, भगवान का एक शुद्ध भक्त होगा, अच्छा हुआ चलो अभी भगवान के भजन में लग जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन नहीं, भोग वृत्ति बहुत प्रबल होती है। ये भोग वृत्ति विवेक बुद्धि वाले मनुष्य को भी अपनी तरफ खींच लेती है। प्रभुपाद जी गीता में एक जगह कहते हैं तात्पर्य में कि हमारी इंद्रियों में से यदि कोई एक इंद्रिय भी यदि नियंत्रित नहीं है तो वो विषय की तरफ खींच जाता है। एक क्लासिकल उदाहरण कौन है, विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कितने हजार साल तपस्या की, 60,000 ईयर्स, कौन कर सकता है, कोई जीता भी नहीं है, 60 साल में लोग लुढ़क जाते हैं। 60,000 ईयर्स तक उन्होंने तपस्या की, ध्यान में बैठे रहे, उसके बाद कौन आया, मेनका आई, छम 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 पायल करके उनके कान वहां गए और खत्म हो गई बात, है ना। तो कौन सी इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, केवल एक इंद्रिय से वो उसके भोग बन गए, उसके शिकार बन गए। अदरवाइज विश्वामित्र ने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया था, लेकिन समस्या यह थी कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया था और ये श्रवण इंद्रिया उनके नियंत्रण में नहीं थी। कल ही हमने हरिकथा श्रवण के ऊपर ध्यान गौर किया था शाम के प्रवचन में, तो वो एक इंद्रिय की कमजोरी की वजह से वो मेनका के शिकार बन गए। तो भोग वृत्ति बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल, और उसको जीवात्मा छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए भगवान बहुत दया करके हमें ये मार्ग दिया है, प्रवृत्ति मार्ग। वेदव्यास ने 5,000 साल पहले ये सब वेदों का विभाग किया, पहले वेद एक ही था, फिर उसको विभाग किया अपने शिष्यों द्वारा, उसको विस्तार करवाया, विभाजन करवाया, इसलिए एक वेद से 4 वेद हुआ। उनके शिष्य जैमिनी सुमंदु पहले वैशंपायन के द्वारा उन्होंने वेदों का विस्तार करवाया, विभाजन करवाया, उसमें उन्होंने ये मार्ग दे दिया, प्रवृत्ति मार्ग, भोग करो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के दायरे में रहकर, धर्म की सीमा का उल्लंघन किए बिना भोग करो। जैसे यति महाराज ने किया, यति महाराज ने 10,000 साल तक भोग किया लेकिन कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया। उस कारण से क्या हुआ, उनको समय आने पर यह एहसास हुआ कि ये भोग में कुछ कोई रस नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। यह वैराग्य बुद्धि का उदय क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने भोग किया धर्म की सीमा का उल्लंघन किए बिना, इसलिए वैराग्य बुद्धि का उदय हुआ। यदि कोई व्यक्ति भोग करता है अधर्म करके, उसे वैराग्य बुद्धि का उत्पन्न होना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे पिंगला 11वें स्कंद में, भागवत के 11वें स्कंद में एक वेश्या की बात आती है जो खूब अधर्म करके, लेकिन पता नहीं उसके पिछले जन्म की सुकृति रही होगी, उसको वैराग्य बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर वो गीत गाती है पिंगलो वाच पूरा भागवतम है वो उद्धव गीतम। लेकिन यूजुअली जो धर्म की सीमा का उल्लंघन करके भोग करते हैं वो पाप कर रहे हैं, अर्थात उनके चित्त में, उनके हृदय में पाप का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्ति भगवत भक्ति के में आना बहुत डिफिकल्ट है। भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो बात अलग है, जैसे प्रभुपाल ने हिप्पियों की कृपा कर दी, लेकिन बहुत ऐसे सामान्य तौर से कोई नहीं आ सकता। इसलिए वेदव्यास ने प्रवृत्ति मार्ग दिया कि ठीक है तुम धर्म का पालन करते हुए भोग करो, और उसमें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह इस प्रकार का सुख मिलेगा इत्यादि इत्यादि। आशा क्या थी कि वो करते करते एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, एक दिन लगेगा कि इसमें कोई रस नहीं, जैसे यजाति का हुआ था, जैसे पुरोरवा का हुआ था। पुरोरवा की कथा 8वें स्कंद में आती है, फिर वापस 11वें स्कंद में ऐल गीता
अइल पुरोरवा का एक नाम था, क्योंकि वो इला का पुत्र था। इला और बुध की शादी हुई थी। इला को शाप ऐसा था, वो 6 महीने पुरुष और 6 महीने स्त्री रहेगी। तो जब वो स्त्री थी तो बुध के साथ उसके समागम से पुरोरवा उत्पन्न हुए थे। तो वो इला के पुत्र होने की वजह से उनका नाम अइल भी था। तो अइल गीता है उद्धव गीता में, भागवत में। पुरोरवा ने किसके साथ भोग किया था? ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी। उर्वशी जो है वो ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो नारायण से उत्पन्न हुई थी। स्वयं नारायण ऋषि जो बद्रिकाश्रम में रहते हैं, क्योंकि नारायण ने उसको, उस अप्सरा को अपनी पुरु से, अपनी जंगा से पैदा किया था, इसलिए उसका नाम है उर्वशी। पुरु से उत्पन्न हुई थी, इसलिए पुरोरवा ने उर्वशी के साथ भोग किया था कितने हजारों साल तक। फिर कुछ कंडीशन टूट गई उनसे, तो उर्वशी भाग गई, उर्वशी छोड़ के चली गई। बोले नहीं, हमारी शर्त टूट गई, अभी मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। लेकिन पुरोरवा बाय दैट टाइम बहुत अटैच हो गए थे उर्वशी से। क्या किया? नारायण की पूजा की, बहुत तीव्र तपस्या, बहुत तीव्र भक्ति करके नारायण को प्रसन्न किया। नारायण सामने प्रकट हुए। नारायण ने बोला वर मांगो। पुरोरवा ने क्या वर मांगा? उर्वशी चाहिए। नारायण बोले धिक्कार है, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं तो मुझे मांग लो, उर्वशी को क्यों मांग रहे हो? देखिए भोग वृत्ति कितनी प्रबल होती। नारायण अपना सर पीटने लगे, पुरोरवा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, त्रिभुवन का नाथ, तुम मुझे मांग लो, तुम मेरी सेवा में आ जाओ, मेरे धाम में आ जाओ, उर्वशी को क्यों मांग रहे हो तुम? वो ऑलरेडी भोग चुके हो उसको। तो तुम पुरोरवा बोले नहीं, उर्वशी चाहिए। वो वापस उर्वशी लोक में गए। भगवान ने बोला ठीक है, भगवान ने निराश होके एवं अस्तु, ठीक है तुम उर्वशी लोक में जाओ। उर्वशी लोक में खूब भोग किया वापस, फिर उनको उनके होश ठिकाने आया। ये सब राजा हमारे लिए पूजनीय है, बहुत महान लोग हैं ये लोग। इनकी ये हालत है, हमारी क्या स्थिति होगी? ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया ये बताने के लिए कि भोग वृत्ति बहुत प्रबल होती है, उससे छुटकारा पाना, एक तो सैद्धांतिक रूप से बोलना या सुनना इसके बारे में, भोग वृत्ति के बारे में, सब कुछ त्याग कर दो, इंद्रिय भोग को छोड़ दो, नहीं वो ऐसे नहीं होता, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए वेदव्यास ने बड़ी दया करके, ठीक है तुम भोग करो, लेकिन धर्म की सीमा का उल्लंघन किए बिना। आशा है कि तुम एक दिन समझ जाओगे, जैसे ये राजा लोग समझ गए। साथ साथ में उन्होंने ज्ञान कांड दिया, कर्मकांड के साथ ज्ञान कांड दिया। ज्ञान कांड में उपनिषद है, वो उपनिषदों में अलग अलग तरह से यही बताया गया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और तुम वो परमेश्वर श्री कृष्ण के अंश हो। इसी बात को बार बार घुटा है उसमें, रिपीट किया है उपनिषद में अलग अलग तरह से, अलग अलग भाषाओं में। तो उपनिषद पढ़ने से ये आशा की जाती है, उपनिषद समझने से, कि साधक देहात्म बुद्धि से परे हो जाएगा। तो देहात्म बुद्धि से परे मतलब वो ज्ञान कांड, वो ज्ञान कांड का पाठ। फिर उपासना कांड दिया। उपासना मैंने कल 5 मुख्य देवताओं की उपासना का वर्णन किया था, पंचोपासना की विधि, सूर्यदेव, गणपति, शिव जी, दुर्गा, और सबसे सर्वश्रेष्ठ विष्णु की आराधना। इन सब की उपासना के बारे में वर्णन उपासना कांड में मिलता है वेदों में, और उन उपासनाओं करने के फल पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई दिल्ली की टिकट खरीद के दिल्ली की ट्रेन में बैठकर मुंबई नहीं जा सकता, है ना? उसी तरह से कोई व्यक्ति दुर्गा की आराधना करके वैकुंठ लोक नहीं जा सकता। तो उनके अपने अपने रिजल्ट होते हैं, लेकिन उन सबका उद्देश्य था मुख्य रूप से कि वो साधक जो है, वो उपासक जो है, वो धीरे धीरे विष्णु भक्ति में लग जाए, वो उसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार से वेदव्यास ने वेदों में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग में क्या है? कर्मकांड है, और जो उपासना कांड में जो चार देवताओं की, देवी देवताओं की जो उपासना जो है वो, और कर्मकांड, ये सब उपासना कांड में आता है, और विष्णु की आराधना और उपनिषद का ज्ञान, ये निवृत्ति मार्ग में आता है। तो कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, वेद, ये वेद का विषय वस्तु है। तो इस वेद को निगम भी कहते हैं। तो वेद कैसे हैं? कल्पतरु के समान है। कल्पतरु के नीचे खड़े रहकर आप कुछ भी मांगो तो आपको मिल सकता है, कल्पतरु। तो उसी प्रकार से वेद जो है वो कल्पतरु है, उसकी तुलना कल्पतरु के साथ की गई है कि वेद का सेवन करने से साधक जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, भौतिक या आध्यात्मिक सुख जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है वेद का आश्रय लेकर, इसलिए उसको कल्पतरु बोला गया है। निगम कल्पतरु, निगम माने वेद, निगम रूपी कल्पतरु, निगम कल्पतरु गलितम फलम। अभी तरु है, वृक्ष है, तो उसका कुछ फल भी होगा, जैसे ये केले का पेड़ है, वहां केले लगे हुए हैं, तो तरु है तो उसके फल भी होंगे। तो इस कल्पतरु निगम नामक निगम रूपी कल्पतरु के भी अपने फल हैं, बहुत सारे फल हैं। वेद रूपी कल्पतरु के बहुत सारे फल हैं, अलग अलग प्रकार के। स्वर्गलोक एक फल है, फिर नीचे बिल स्वर्ग एक फल है, इस भौतिक जगत में सुख वो एक फल है, ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना वो एक फल है, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना वो एक फल है, अलग अलग फल है उसके, वेद रूपी कल्पतरु से मिलते हैं। मुक्ति है ना, चार प्रकार की मुक्ति है, और पांचवी सायुज मुक्ति, पांच प्रकार की मुक्ति, ये सब उस कल्पतरु के फल है। लेकिन सब कल्पतरु, ये जो कल्पतरु सबका सबसे परिपक्व फल है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, क्या है वो? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुभ गोस्वामी से के मुखारविंद से निकला हुआ सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये जो फल है वो कल्पतरु का है, और इसको आस्वादन किया है, और जिसके आस्वादन करने से और ये ज्यादा मीठा हुआ है, इसके आस्वादन से और किसके सेवन से? शुकदेव गोस्वामी। शुक माने तोता, कुछ लोग ऐसे गांव वाले लोग कहते हैं कि जब कोई फल तोता खाता है तो फिर वो और भी मीठा हो जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। तो भागवतम रूपी जो फल है वो ऑलरेडी मीठा है, लेकिन चूंकि ये शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया तो और भी मीठा हो गया। तो निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखात अमृत प्रव संयुतम, ये अमृत, अमृत रूपी फल है, उसमें प्रचुर मात्रा में, ये वास्तव में भागवतम में अमृत के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, उसमें हरि कथा अमृत है। अमृत का अर्थ क्या होता है? अमृत, जिसका सेवन करने से व्यक्ति मृत्यु से परे हो जाता है, उसको अमृत कहते हैं। शुक मुखात अमृत प्रव संयुतम पीबद भागवतम, क्या है वो? भागवत, वो परिपक्व फल कौन सा है? निगम रूपी कल्पतरु का भागवत, भागवत पुराण उसका परिपक्व फल है। पीपद भागवतम रसम आलयम, और ये क्या है? रसों का आलय है। रस पांच मुख्य रस बताए जाते हैं, कौन से पांच मुख्य रस कौन कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये पांच मुख्य रस हैं, और गौण रस भी है, और इन सब मुख्य और गौण रसों का वर्णन प्रत्यरसानु सिंधु में किया गया है, रूप गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। तो इसमें भौतिक जगत में हम अलग अलग प्रकार के रस भोगने का प्रयत्न करते हैं, है ना, अपने दोस्तों के साथ, अपने नौकरी में अपने बॉस के साथ, अपने माँ के साथ, बाप के साथ, पत्नी के साथ, लेकिन ये सब रस कैसे हैं? इस शरीर के ऊपर टिके होने की वजह से इसमें समय आने पर इसमें रुकावट आ जाती है, क्योंकि ये शरीर खुद अशाश्वत है, हमारा भौतिक शरीर वो शाश्वत, दुखाले में शाश्वतम, ये अशाश्वत है, इसका नाश हो जाता है। और भौतिक जगत में तीन गुण हमेशा कॉम्पिटिशन करते रहते, स्पर्धा करते रहते हैं, इसलिए ये रसों में विक्षेप आ जाता है। दोस्त पहले अच्छे दोस्त से बहुत अच्छे दोस्त, बाद में उनकी दुश्मनी हो जाती है, भौतिक जगत में ऐसे होता है। तो भौतिक जगत में कोई भी रस का आस्वादन नहीं कर सकता, क्योंकि भौतिक जगत उस मूल जगत का प्रतिबिंब है, ऊर्जा मूलम अधः शाखम, ये जगत उल्टा है, वो आध्यात्मिक जगत के उसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ, ये भौतिक जगत है, मूल रूप में उसके रस नहीं है। तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो मुख्य पांच रस जो है और भी जगह रस है उसका आलय है, उसका आगार है, उसमें रस प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं श्रीमद् भागवत में। मोहर और उसी का भूवी भाव का है, और जो भावुक भक्त, भावुक भक्त अर्थात जो तीन गुण से परे जो आध्यात्मिक भाव है, जो भाव अवस्था में है, वो लोग इसका भली बात आस्वादन करते हैं, इसका सेवन करते हैं श्रीमद् भागवतम का। तो श्रीमद् भागवतम का जो व्यक्ति उसका एक बार आस्वादन कर लेता है और उससे आसक्त हो जाता है, उसको दूसरा कोई ग्रंथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, वो सर्वोत्तम ग्रंथ है। उसमें इतना प्रचुर मात्रा में अमृत भरा है, उसमें भगवत भक्ति और वैराग्य विद्या, श्रीमद् भागवत पुराण में भगवत भक्ति और वैराग्य विद्या के अलावा और कुछ नहीं है। आप दूसरे इतिहास पुराणों में यदि देखेंगे तो उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे महाभारत में हमने देखा, महाभारत मुख्यत्वे उसमें क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, भगवत भक्ति कुछ कुछ जगह पे हिंट दे रही है भगवत गीता के रूप में और दूसरे ऐसे चैप्टर में के रूप में। लेकिन भागवत पुराण जो है वो खास करके भगवत भक्ति और वैराग्य विद्या, बस इसके अलावा किसी की बात नहीं करता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, इस श्लोक में हमने देखा नष्ट प्राश उद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण करने से क्या होता है, हमारे हृदय में जितनी भी अभद्र वस्तुएं हैं उसका नाश हो जाता है। नष्ट प्रायशु भद्रेशु, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, वो अभद्र जितनी भी चीजें हैं वो नाश, उसका नाश हो जाता है। अभद्र वस्तुएं कौन कौन से मुख्य, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये अभद्र वस्तुएं हैं, ये अनर्थ हैं सब। तो श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण करने से या पाठ करने से इन अभद्र वस्तुओं से मुक्ति मिल जाती है। नष्ट प्राश भद्रेशु नित्यम भागवत से भगवती उत्तम श्लोक है, और उसके बाद क्या होता है, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक श्रीहरि का एक नाम है, उनके चरणों में निष्ठा भक्ति प्राप्त होती है। भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भगवती नैष्ठिकी, नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होती है, निष्ठावान मनुष्य निष्ठावान बन जाता है, उसकी श्रीहरि के चरणों के प्रति निष्ठा हो जाती है, अर्थात वो उसे कभी चलित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भक्ति वो साइड बिजनेस की तरह करता है, भक्ति कोई साइड बिजनेस नहीं है कि कभी कभार मनोरंजन करने के लिए या फ्री टाइम में कुछ और काम करने के लिए नहीं तो भक्ति कर ली नो, या दिखावा करने के लिए, भक्ति भी दिखावा करने के लिए नहीं है। कोई मनुष्य कितना भी दिखावा कर ले, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, उनको पता है कि कौन कितने पानी में है, भगवान को सब पता है। हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम कोई भी सेवा कर रहे हैं वो भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं कि अपने खुद की प्रीति के लिए कर रहे हैं, वो भगवान को पता है, इसलिए भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि हम देखते हैं कृष्ण लीला में और महाभारत की लीला में देखते, कथा में देखते हैं हम लोग कि दुर्योधन जैसे दूसरों को धोखा देने वाले लोग, जो दूसरों के साथ धोखाधड़ी करने वाले, खुद भगवान से धोखा खा गए, है ना, भगवान ने उनको भी धोखा दे दिया। तो भगवान उसमें माहिर है, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता, वो सबको धोखा दे देते हैं, उन्होंने ऑलरेडी धोखा ऑलरेडी दे दिया है हमें, इस भौतिक जगत में इस माया में हमें डाल दिया है, ये सबसे बड़ा धोखा है, इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता। अब हमें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हम आत्मा नहीं है शरीर है, उससे बड़ी धोखाधड़ी कोई हो नहीं सकती। तो ऑलरेडी उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो कितने चालाक हैं, इसलिए हमें उनके साथ चालाकी करने की जरूरत नहीं है। वो चालाकी उन्होंने की है क्योंकि हमने ऐसा मांगा है, हमने खुद भोग करना चाहा, इसलिए भगवान ने ठीक है तुम ये माया में रहना चाहते हो, माया को भोगना चाहते हो तो फिर ठीक है माया जगत में रहो, इसलिए भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए भागवतम में अनेक बार ये बात आती है कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, जो दंभ रहित और कपट रहित होकर भक्ति करते हैं, दंभ नहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ और ऐसा नहीं, कपट रहित दंभ रहित जो भक्ति करता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। केवल दिखाने के लिए नहीं, किसको दिखाना है, यदि दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति है जो दंभी है, यदि मान लीजिए मैं दंभी हूं एक लंबी भक्त हूं मैं, और मैं केवल दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करता हूं। तो उससे, ऐसे व्यक्ति से कौन कौन प्रभावित होंगे और कौन लोग उससे उसके चक्कर में आ जाएंगे? जो ज्यादा बुद्धिशाली नहीं है, जिसका जिसके विवेक बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण नहीं है, जिसका डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत पुअर है, ऐसे व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। जिसकी बुद्धि बहुत तेज है वो ऐसे दम्भी लोगों से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, उसको पता चल जाता है कि दम्भ हो रहा है। तो लोगों को इंप्रेस करने से क्या फायदा? यदि इंप्रेस करना है तो भगवान को करना चाहिए, और भगवान को इंप्रेस करने के लिए दम्भ पहले छोड़ना पड़ता है। दम्भ छोड़े बिना भगवान को खुश नहीं कर सकता। तो भागवतम का नित्य श्रवण करने से और कैसे कपट रहित होकर हम भगवान में श्री हरि के चरण में निष्ठा भक्ति प्राप्त होती है। निष्ठा भक्ति अर्थात वो किसी भी हालत में वो भक्ति में कभी कमी नहीं होती। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण निकल दिया था, अप्रतिहता भक्ति, निष्ठा भक्ति माने अप्रतिहता, उसमें कभी कोई अवरोध आ जाए तो भी उसे वो चलित नहीं होता है, वो निष्ठा। भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भवति नैष्ठिकी, निष्ठा भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमने कल वैसे भी शाम को श्रवण की महिमा बताई थी। तो श्रवण हमें क्या करना चाहिए? हरि कथामृत, तो मुख्य दो ग्रंथ बताए श्रील प्रभुपाद जी ने, भगवद गीता, क्या बोलते हैं उसको, जशी आहे तशी, एज इट इज भगवद गीता यथारूप, उसको पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और दूसरा श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवतम जो है वास्तव में वेदव्यास ने जो ब्रह्मसूत्र लिखे थे उसी के ऊपर उन्होंने टीका लिखी, वही भागवत है। भागवतम ही ब्रह्मसूत्र भाष्य है, तो इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और इसमें कितनी सुंदर मधुर लीलाएं हैं भगवान की, तो उसको बिना थके इसका नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए, नित्य रूप से। किससे सुनना चाहिए? भागवत से सुनना चाहिए। भागवत दो प्रकार के, एक तो पुस्तक भागवत और दूसरा व्यक्ति भागवत। जैसे श्रील प्रभुपाद उत्तम महाभागवत थे, उत्तम कोटि के, तो ऐसे महाभागवतों से और उनके जो ऐसे शिष्य होते हैं, शुद्ध भक्त के जो शिष्य होते हैं, जो भागवत के सिद्धांत को जिन्होंने पचाया है, जो अपने जीवन में उसका पालन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए नित्य रूप से। उसका कारण क्या है? भागवतम श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम में एक जगह लिखते हैं, पहले स्कंद में, तात्पर्य में, कि कोई मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष संग से जितना लाभ प्राप्त कर सकता है उतना ही लाभ, उससे कम नहीं, उतना ही लाभ वो श्रीमद् भागवतम के नित्य श्रवण से प्राप्त कर सकता है। जैसे अर्जुन, गोपियां या उद्धव, यशोदा माई, नंद बाबा, ये सब लोगों ने कृष्ण के साथ उनका सीधा संबंध था ना, प्रत्यक्ष संबंध था उनके साथ, थे वो वाणी से और वपू से, दोनों रूप से। जो लाभ उन्होंने प्राप्त किया वही लाभ हम लोगों को भी प्राप्त हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। वो श्रीमद् भागवतम के रूप में है। श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण पाठ करने से वही लाभ हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम पूरी भक्ति के साथ इसका श्रवण पाठ करें तो, कपट रहित होकर, दंभ रहित होकर, इसकी महिमा को समझकर यदि हम नित्य इसका श्रवण करेंगे तो उतना ही लाभ जो भगवान के प्रत्यक्ष संबंध से होता है, संग से होता है, वही लाभ इससे भी प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसका एक दूसरा आपको उदाहरण दे देता हूं, पद्म पुराण में आता है, जब श्री हरि ने उद्धव को पूरी उद्धव गीता सुना दी, उसके बाद भगवान ने उद्धव को क्या बोला कि अभी 7 दिन के बाद समुद्र का पानी ऊपर आएगा और ये पूरी द्वारका नगरी डूब जाएगी, इसलिए तुम जाओ बद्रिकाश्रम। उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने के लिए बोल देते हैं, तीर्थ यात्रा करो और मेरे ऊपर चिंतन करो, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, उसमें भक्तियों का अध्याय में वर्णन कर दिया था, बस तुम इसी के ऊपर चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, ये जगह छोड़ दो। फिर उसके बाद की बात पद्म पुराण में आती है,
उद्धव जी बोलते हैं कि श्रीहरि ये तो ठीक है आपने मेरे कल्याण के लिए बात बता दी, लेकिन आपके अप्रकट होने के बाद आप बोले कि 7 दिन के बाद समुद्र का पानी ऊपर उठेगा, पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा, आप भी चले जाओगे इस जगत को छोड़ के, तो फिर धर्म किसका सहारा लेगा? अभी तो आप यहां विद्यमान हो तो धर्म आपके सहारे हैं, आप चले जाओगे उसके पास, उसके बाद धर्म किसका आश्रय लेगा? उसके बाद श्री हरि उद्धव को दिव्य दृष्टि देते हैं। उद्धव जी देखते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत में प्रवेश किए हैं। अच्छा, श्री कृष्ण स्वयं ही श्रीमद् भागवत बन के प्रकट हुए हैं। तो ये श्रीमद् भागवत या भगवद गीता, ये दोनों श्री कृष्ण की वाणी है, ये श्री कृष्ण का ही रूप है। जैसे हम लोग पिक्चर या अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, वैसे ही ये भगवान की भक्ति ग्रंथ जो है उसकी पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण बताया है कि जो मनुष्य अपने घर में श्री हरि से संबंधित भक्ति ग्रंथों का संग्रह करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनका पाठ श्रवण करता है, उसके घर में राधा कृष्ण स्वयं रहते हैं और सभी देवी देवता वहां निवास करते हैं। और फिर आगे बताया, केवल पूजा मात्र करने से, घर में अच्छे से संग्रह करने से उसकी पूजा अर्चना करेगा तो भी सभी देवी देवता और ऋषि महर्षि श्री कृष्ण स्वयं वहां रहते हैं। केवल संग्रह की बात करें तो फिर जो व्यक्ति पढ़ता है, उसका श्रवण करता है, उसकी तो बात ही क्या है। तो भगवान ने कोई दया बरसाने में कोई कमी नहीं की है। भगवान ने दो प्रकार के भागवत दिए हैं हमारे पास, श्रील प्रभुपाद हैं वो महाभागवत है, और श्रीमद् भागवतम क्रम जो है उसके ऊपर श्रील प्रभुपाद ने टीका भी लिखी है। तो ये सर्वोत्तम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, फिर आगे चैतन्य चरितामृत भी है, ये सर्वोत्तम ग्रंथ हमें दिए हैं। हमारे पास सबसे अच्छा शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, सबसे अच्छा मंत्र है कौन सा, महामंत्र, सबसे अच्छे गुरु हैं कौन है, श्रील प्रभुपाद, सबसे अच्छा डायट है क्या है, महाप्रसाद, सबसे अच्छी संस्था है कौन सी, इस्कॉन, ही बिल्ट द हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव, श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया बस सकती है, सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है, महा मंत्र बेस्ट दिया है, डायट बेस्ट दिया है, गुरु बेस्ट है, शास्त्र बेस्ट है, घर बेस्ट दिया है, संस्था सबसे अच्छी है, तो और क्या चाहिए भी? फिर भी हम बेस्ट नहीं है। भगवान ने सब कुछ बेस्ट दिया है, एवरीथिंग बेस्ट, बट वी आर नॉट बेस्ट, वी आर द वर्स्ट। इतने सब पाने के बाद भी जब हमारी ये हालत है कि हम लोग बस इसी में फंसे हुए हैं, तो फिर वो पूर्व बाबा की मांग सुनकर जैसे भगवान ने सर पीटा था, वैसे हमें देख के महाप्रभु भी सर पीटते हैं अपना, कि क्या बाकी बचा है अभी। सबसे अच्छे अवतार चैतन्य महाप्रभु, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सर्व अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदर, चैतन्य महाप्रभु शिशि गौर निताय, ये सबसे अच्छे अवतार है, महावदन्याय, इनसे ज्यादा कृपालु के अवतार प्रकट नहीं हुआ है इतिहास में, पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में। तो सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज बेस्ट, और भगवान के भक्त इतने कृपालु हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने सबको बुद्धि दी है, अपने शिष्यों को, अनुयायियों को, वो घर घर जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं, है ना। हम लोगों को भी ऐसे ही किसी ने प्रचार किया था कि हम लोग तो बस भोग में लगे हुए थे, किसी ने हमें कोई भगवत गीता पकड़ाई, किसी ने प्रसाद खिलाया, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए आए सोसाइटी में, हम लोग ऐसे ही भक्त बने, तो हम लोगों को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन भगवान के भक्त आकर हमें सिखाते हैं। हमने तो पहल नहीं की, हमने तो इनिशिएटिव नहीं लिया कि मुझे सिखाई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमने तो नहीं की, भगवान के भक्तों ने आकर सिखाया हमें। श्रील प्रभुपाद जी खुद गए अमेरिका, ऐसा नहीं कि हिप्पी लोग आए थे इंडिया में पूछने के लिए कि हमें भगवद गीता का ज्ञान दो। तो भगवान ये भी कृपा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये भी पूरा किया है कि सामने से आकर बोलते हैं कि भाई तुम उठो जागो, ये माया की नींद से जागो, अभी भगवान बुला रहे हैं। तो कोई कमी नहीं है, कृपा की कोई कमी नहीं है,
यानी इतनी सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो फिर ये तो बलिहारी है। भगवान ने बहुत कृपा की, बहुत कृपा की, अभी इस कृपा को हमें लेना चाहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा हम कितना, इसलिए गीता भगवान बोलते हैं ये यथामा प्रबदित ताम सत्यं विजामि अहम्। भगवान की कृपा जो जितनी लेगा उसके हिसाब से फिर उसको फल मिलेगा उसका। इसलिए हम देखते हैं कि श्रीमद्भागवतम का श्रवण गोकर्ण ने धुंधुकारी के लिए भागवत कथा सुनाई थी और उस श्रोतागण में बहुत सारे लोग बैठे थे। धुंधुकारी तो प्रेत हो चुका था, वो तो पेड़ पे रहता था प्रेत होके, उसका भाई गोकर्ण का भाई, गोकर्ण थे महाभागवत, तो उसको प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने भागवत कथा सुनाई। तो वो सुन के, वो गोकर्ण के मुख से वो सुन के, वो पेड़ पे बैठा हुआ था उनका भाई धुंधुकारी जो प्रेत योनि में था, वो उसने 7 दिन लगातार भागवत कथा सुनी और तुरंत ही वैकुंठ से एयरप्लेन आ गया धुंधुकारी को लेने के लिए, वैकुंठ धाम चला गया और बाकी के वहीं रह गए, मनुष्य वहीं रह गए, प्रेत वैकुंठ चला गया। तो कुछ लोग पूछे ऐसा क्यों, तो गोकर्ण बोले अलग अलग श्रद्धा की तीव्रता के हिसाब से फल मिलता है। धुंधुकारी की श्रद्धा बहुत तीव्र थी, पूर्ण श्रद्धा थी उसको मेरे अंदर और कथा के अंदर और श्रीहरी के अंदर, पूर्ण श्रद्धा थी उसको, इसलिए उसको पूर्ण फल मिला। ये यथामा प्रबदित ताम सत्यं विजामि अहम्। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है उसके साथ में उस प्रकार का व्यवहार करता हूं, भगवान कहते हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा फल उसको मिलता है। इसलिए स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में श्रोतागण के भी अलग अलग विभाजन बताए हैं कि श्रोता भी अलग अलग श्रेणी के होते हैं। कुछ बगुले जैसे होते हैं, कुछ कौवे जैसे होते हैं, कुछ गधे जैसे होते हैं, कुछ हंस जैसे होते हैं, उसके अलग अलग टर्म्स बताए, वहां अलग अलग नाम दिए हैं उस श्रोता, अलग अलग प्रकार के श्रोता होते हैं। तो उसमें हमें किस प्रकार का श्रोता बनना चाहिए, हंस जैसे। हंस क्या करता है, दूध और पानी का मिश्रण होता है तो उसमें से दूध ले लेता है, पानी को छोड़ देता है, मतलब वो अलर्ट होता है एकदम। तो हमारी श्रवण की गुणवत्ता, जैसा हमने कल बताया था शाम को, हमारी श्रवण की गुणवत्ता, हमारी श्रद्धा इस प्रकार से होनी चाहिए, उसमें तीव्रता होनी चाहिए, तो फिर हमें उसका उस हिसाब से फल मिलता है। हालांकि कलयुग में ये जो बातें जो शास्त्र में लिखी है उस प्रकार से, जैसे धुंधुकारी का हुआ था एक ही बार में, जैसे परीक्षित महाराज का हुआ एक बार कथा सुनी और आ गया वैकुंठ से एयरप्लेन, कलयुग में बहुत डिफिकल्ट है ऐसा होना, क्योंकि कलयुग में लोग बहुत पतित है, बहुत ज्यादा पतित है, इसलिए एक बार में सुनने उसमें, यदि ऐसा नहीं होता है कि हमारे एक बार भागवत सुनने से हमारे लिए वैकुंठ से एरोप्लेन नहीं आया, वो भागवतम की इनएफिशिएंसी नहीं है, भागवतम सक्षम है, समर्थ है, इनएफिशिएंसी किसकी है, हमारी है, हमारी श्रद्धा में कमी है, हमारी निष्ठा में कमी है, इसलिए उसका तुरंत पूर्ण फल नहीं मिलता। जैसे भगवान का नाम, भगवान का एक नाम, भगवान का नाम यदि एक बार भी जप करें तो भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए समर्थ है, सक्षम है वो। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक ही बार नाम जप करने से पागल हो जाते, लेकिन हम अपराध करते हैं, नाम अपराध करते हैं, इसलिए हमें उसको बार बार करना पड़ता है, नियमित रूप से संख्या पूर्व हर 16 माला जप कम से कम करनी पड़ती है, कम से कम 16 माला, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम, हम लोग ऐसे करते हैं ज्यादा से ज्यादा 16 माला ऐसे करते हैं हम लोग। एक्चुअली 16 माला जो है वो तो मिनिमल स्टैंडर्ड है, कम से कम 16 माला, और स्काई इज लिमिट, जितना ज्यादा कीर्तन या सदाहरी। उसी प्रकार से भागवत में भी वही है, क्योंकि हमारी श्रद्धा निष्ठा कम है इसलिए फिर उसका फल धीरे धीरे मिलता है। इसलिए सलाह दी गई है नित्यम भागवत सेवा, केवल सप्ताह नहीं, नित्यम भागवत सेवा, लगातार सुनते रहो भागवतम। क्यों, क्योंकि हमारी श्रद्धा कम है, इसलिए वो सुनने से अभद्र वस्तुओं का नाश होगा और हमारी श्रद्धा घनीभूत हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो ये मार्ग है, तो हमें साधु संग, साधुओं के संग में बैठकर नियमित रूप से हरि कथा श्रवण करते रहना चाहिए और फिर उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए, यथास्थिति यथा समय यथा पात्र, उसको प्रयत्न करते रहना चाहिए। और ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को बताया था कि यदि तुम्हें हरि नाम में वास्तविक तीव्र रुचि प्राप्त करनी है, क्योंकि कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्य 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 गतिरंगता। तो ईश्वरपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, उन्होंने महाप्रभु को बताया कि यदि तुम्हें हरि नाम में वास्तविक रुचि चाहिए तो तुम्हें श्रीमद् भागवतम का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहिए। वन शुड स्टडी भागवतम स्क्रूटिनाइजिंगली, विश्लेषणात्मक, अर्थात भागवतम को भली भांति अलग अलग दृष्टिकोण से इसको समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर उस दिन में एक ही श्लोक लेने की प्रथा दी है। भागवतम का एक श्लोक लेकर उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करना चाहिए अलग अलग दृष्टिकोण से, क्योंकि भागवतम बहुत गहरा है, बहुत गहरा। उसकी गहराई में जितना जाओ उसके फिर अलग अलग समुद्र में ऐसा होता है ना, समुद्र में बहुत सारे रत्न छिपे रहते हैं, ऊपर से रत्न दिखाई देते हैं नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके अंदर डुबकी लगानी पड़ती है और वो भी बहुत गहरे जाना पड़ता है। ऊपर तैरते रहेंगे तो रत्न मिलते हैं नहीं, उसके तल तक जाना पड़ता है, बहुत डीप जाना पड़ता है, गहराई तक जाना पड़ता है। उसकी गहरा समुद्र की गहराई में जाते हुए क्या प्राप्त होता है, अलग अलग प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से भागवतम एक समुद्र जैसा है, उसकी जितनी गहराई में जाएंगे उतने नए नए रत्न मिलते हैं। इसलिए हमें ऐसे महाभागवतों से भागवत की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए नित्य रूप से, कभी कभार नहीं, नियमित रूप से। और हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी की लिखी हुई टीका है श्रीमद् भागवतम पर, श्रीमद् भागवत पुराण का पूरा 18 वॉल्यूम सेट है हमारे पास, है ना, मराठी में भी मिलता है, हिंदी में है, इंग्लिश में, सभी भाषाओं में है। उसमें प्रभुपाद जी की टीका बहुत सुंदर है। प्रभुपाद कहते हैं कि माई पर्पस आर माई ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसीज, ये मेरे दिव्य भाव है, मेरे जो लिखे हुए तात्पर्य है वो मेरे दिव्य भाव है। तो प्रभुपाद जी की लिखी हुई टीका के साथ भागवतम का नित्य पाठ श्रवण करना चाहिए नित्य, उसमें कोई ऐसा नहीं चलो बहुत हो गया बस उब गए नहीं, ये एक ऐसा समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं है, उसमें डूबते जाओ बस, फिर उसमें रत्न प्राप्त, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम रूपी रत्न इसमें प्राप्त होगा हमें। हरे कृष्ण।